ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रूस रवाना होंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सशक्त करना है। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से सभी गतिविधियों में शामिल हुआ है। श्री मिश्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास तथा वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
India brings great value to BRICS and its contributions have played a vital role in shaping BRICS efforts in areas such as economic growth, sustainable development and global governance reform.
विदेश सचिव ने कहा कि दो दिन का सम्मेलन आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के अलावा ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होने की उम्मीद है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर समझौते पर पहुंच गए हैं। श्री मिश्री ने बताया कि समझौते से नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी हो सकती है और 2020 में शुरू हुए तनाव का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के परिणाम स्वरूप सीमा क्षेत्रों पर गश्त व्यवस्था पर यह सहमति बनी है। रूस की सेना में लड़ रहे भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि करीब 85 भारतीय रूस से लौट आए हैं और करीब 20 लोग अभी भी वहीं पर हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई थी। 15वें क्लाइडोस्कोप शैक्षणिक सम्मेलन की शुरुआत आज नई दिल्ली में हुई। सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू ने किया है। 3 दिन के कार्यक्रम का विषय है सतत विश्व के लिए नवाचार और डिजिटल परिवर्तन। सम्मेलन ने 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कम्युनिकेशन और अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय विकास पर चर्चा करने के लिए शैक्षणिक समुदाय, उद्योग जगत तथा सरकार के प्रखर विचारकों को एक मंच उपलब्ध कराया है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा से अलग इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अध्यक्ष प्रोफेसर तान एंग चे के साथ चर्चा की। श्री प्रधान ने कहा कि ये चर्चा दोनों शैक्षणिक संस्थानों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मौजूदा अवसरों के प्रयोग और शिक्षा तथा अनुसंधान से जुड़े सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग से कई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने शहीदों को नमन किया है। श्री मोदी ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके अटूट समर्पण की प्रशंसा की। गृहमंत्री ने कहा कि ये अवसर पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों द्वारा राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए किए गए असीम बलिदानों का सम्मान करता है। श्री शाह ने सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार की उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना ने भारतीय विमानन क्षेत्र के परिदृश्य को बदल दिया है। उड़ान योजना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने हवाई अड्डों और हवाई मार्गों की संख्या में वृद्धि के साथ ही करोड़ों लोगों के लिए हवाई सफर संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापार, वाणिज्य और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने में व्यापक प्रभाव रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विमानन क्षेत्र को विस्तार देना जारी रखेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने सभी दो और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने एकमात्र सीट के लिए आज उम्मीदवारों की घोषणा की। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से और राजा पितर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। चतरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के जनार्दन पासवान को टिकट दिया गया है। इन तीनों सीटों पर पहले चरण में 13 नवम्बर को मतदान होगा। एनडीए के सीट बंटवारे के अंतर्गत दोनों दलों को कुल 3 सीटें दी गई हैं। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। इस बीच ओडिशा सरकार तटीय जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी कर रही है। मछुआरों को कल तक समुद्र से वापस लौटने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।